अध्याय 4। सोगुन तंत्र के आरंभ 1192 ईस्वी से इएयासु के राज्यारोहण काल तक। पृष्ठ संख्या 28। वाकुफ संगठन। नए सेनानायक एवं अधिनायक योरितोमो के लिए अपनी शक्ति को संगठित करना कठिन हो गया, ताकि शक्ति उसके परिवार के हाथ में ही बनी रहे। उसने शक्तिशाली बौद्ध भिक्षुओं के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित किए और नागरिक अभिजात वर्ग के लोगों को लंबे युद्ध के दौरान उनसे छीनी गई भूमि वापस कर दी। उसने न तो वहां के राज सिंहासन पर आधिपत्य जमाने का प्रयत्न किया और न ही फ्यूजीवारा परिवार के संभ्रांत वर्ग के लोगों को उनके पदों से हटाने की ही कोशिश की। उसने क्योतो में राज दरबार को पूर्ववत बना रहने दिया। अभी तक सिद्धांततः राज्य की संपूर्ण शक्ति राज दरबार में ही निहित थी और राज व्यवहार और रीति रिवाजों को पूर्ववत जारी रखने के लिए उत्साहित किया जाता था। लेकिन योरितोमो ने पुराने गैर सैनिक अधिकारी वर्ग के साथ साथ अपने प्रति वफादार एक अलग सैनिक प्रशासन की स्थापना कर राज दरबार को निष्प्रयोजन बना दिया। उसने सभी प्रांतों में अपने सैनिक अधिकारी और कर समाहर्ता नियुक्त किए। उन्होंने क्योतो स्थित असैनिक प्रशासन द्वारा नियुक्त स्थानीय नियमित अधिकारियों को पदच्युत नहीं किया, अपितु उनके साथ ही कार्य करते हुए शासन के अधिकारों को अपने हाथों में ले लिया तथा सरकारी कार्यों को अधिक तत्परता एवं कुशलता से संपादित किया। उन्होंने धार्मिक संघों की भूमि के अलावा सारी भूमि पर करारोपण किया। फ्यूजीवारा शासन के अंतिम वर्षों के समान सामंतों की बड़ी बड़ी जागीरें इन करों के भार से मुक्त न थी। इस सैन्य संगठन को वाकुफू कहते थे, जिसका अर्थ है शिविर संगठन। योरितोमो इस संगठन का सर्वे सर्वा था और सन 1192 में इसे शोगुन उपाधि प्रदान की गई। यो सीमित अर्थों में शोगुन शब्द, जिसका अर्थ सेनानायक होता है, कोई नया नहीं था, परंतु कुछ समय से यह सेना के सर्वोच्च अधिकारियों के लिए सामान्य रूप से प्रयुक्त होने लगा था। अब इस शब्द को सैन्य अधिनायक के अर्थ में एक नया गौरव मिल गया। योरितोमो ने वाकुफू का केंद्र उत्तर में वर्तमान टोक्यो के समीप ही कामाकुरा में स्थानांतरित कर दिया और यहाँ एक नई राजधानी की स्थापना की। कामुको राकियोतो के विलासितापूर्ण वातावरण तथा वहाँ के राज दरबार के संभ्रांत वर्गीय षड्यंत्रों से काफी पड़े था। यह स्थान उत्तर में स्थित सैनिक वर्ग की जागीरों के भी निकट था, जिनके सहयोग पर ये मुख्य रूप से आश्रित थे। इस प्रकार यहाँ इस समय दो प्रशासन व्यवस्थाएं एक साथ काम कर रही थी। इनमें एक असैनिक प्रशासन था और दूसरा सैनिक प्रशासन। दोनों के अपने अपने अलग संगठित अधिकारी वर्ग थे और दोनों की अपनी पृथक राजधानियां थीं। इनमें से कामाकुरा का सैनिक प्रशासन अधिक शक्तिशाली था, यद्यपि सिद्धांततः वह असैनिक प्रशासन के ही अधीन था। जापान ने 7वीं और 8वीं शताब्दी में चीन के जिस सुसंपन्न संगठन का अनुकरण किया था, वह अब समाप्त प्राय था। एक ऐसी द्वैध शासन प्रणाली का संस्थापक होने के कारण, जो इस काल से 19वीं शताब्दी के मध्य के भी बाद तक लगभग 650 साल तक प्रचलन में रही, योरितोमो की गणना जापान के महानतम प्रतिभा संपन्न राजनीतिज्ञों में की जाएगी। जिस शासन व्यवस्था को योरितोमो ने इतने अधिक प्रयत्न से कार्यान्वित किया था, उसके वंशज अधिक समय तक उस पर अपना नियंत्रण कायम न रख सके। उसके परिवार का भी शाही राजघराने तथा फ्यूजीवारा परिवार की तरह शीघ्र ही अंत हो गया। अब वहां की वास्तविक सत्ता होजो परिवार के हाथों में आ गई। इस परिवार के कुशल नायक ने शोगुन का पद ग्रहण नहीं किया और बाहरी तौर पर फ्यूजीवारा के समान ही इसने भी सम्राट के प्रति आदर भाव प्रकट किया। इसने राज सिंहासन पर नाबालिग राजकुमारों को अधिष्ठापित किया, लेकिन परिपक्व वय प्राप्त करने से पहले ही उन्हें राजगद्दी छोड़ने के लिए विवश कर दिया जाता। प्रारंभ में यह पद योरितोमो के वंशजों के लिए ही सुरक्षित था, परंतु अब उसके प्रत्यक्ष वंशज समाप्त हो गए, जो फ्यूजीवारा या राज परिवार के लोगों को इस पद पर नियुक्त किया जाने लगा। होजो परिवार के नायक राजप के पद से ही संतुष्ट थे। उन्होंने काफी कड़ाई से अपने शासन सत्ता का उपभोग किया तथा राजाओं और शोगुनों पर काफी सख्त नियंत्रण रखा। होजो काल 1109 से 1333 तक। होजो काल यद्यपि गृह कलह और सैनिक शासन का काल था, परंतु फिर भी यह नहीं कहा जा सकता कि इस युग में संस्कृति एवं कला के क्षेत्र में उन्नति नहीं हुई। इस काल में बौद्ध धर्म की नई शाखाओं का उद्भव हुआ, जो वस्तुतः नवीन आवश्यकताओं और मौलिक धार्मिक चिंतन की अभिव्यक्ति थी। बौद्ध धर्म के पूर्वलिखित आरंभिक विभाजनों के समय ही इनमें से अधिकांश शाखाओं का उद्गम स्थल जापान से बाहर था, जो चीन के मार्ग से जापान में प्रविष्ट हुई, परंतु जापानी अनुयायियों ने इन्हें अपने अनुरूप परिवर्तित कर लिया था। इनमें से एक शाखा जैन बौद्ध धर्म थी, जिसका वहाँ के सैनिक वर्ग पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ा। इसने बोध प्राप्ति के लिए मुख्य रूप से पुस्तकीय ज्ञान के बजाय ध्यान व चिंतन पर अधिक जोर दिया, क्योंकि चिंतन द्वारा ही गौतम ने बोध प्राप्त किया था। जैन ने साधक के लिए मन को एक विशिष्ट प्रकार की पूर्ण एकाग्रता की अवस्था में लाना आवश्यक बताया। सत्य का ज्ञान प्राप्त करने के लिए साधक को इस संसार का बिल्कुल ही नए दृष्टिकोण से पर्यवेक्षण करना चाहिए तथा उसे जीवन की आपदाओं के प्रति उदासीन रहना चाहिए। जैन धर्म में सरलता पर जोर दिया गया है तथा जीवन के गहनतम रहस्यों के साथ इसका संबंध जोड़ा गया है। इसमें संचित शक्ति द्वारा पुष्टपूर्ण आत्मसंयम को अत्यधिक महत्व प्रदान किया गया है। इस मत की कठोरता तथा सरलता प्राचीन मतों की सीधी सादी शिक्षाओं और उनके अलंकृत मंदिरों के बिल्कुल विपरीत है। इसने वहाँ के योद्धा वर्ग को बहुत अधिक प्रभावित किया, परंतु इसके कष्ट साध्य अनुष्ठानों का बहुत कम लोगों ने ही पूर्णता पालन किया। इसका वहाँ के सामंतीय जीवन पर भी काफी गहरा प्रभाव पड़ा। वहाँ की चित्रकला, वास्तुकला, भूदृश्य, उद्यान कला, सामाजिक संसर्ग तथा शिष्टाचार साहित्य आदि सभी पर विशेष रूप से उत्तर सामंत काल में इसका प्रभाव स्पष्ट लक्षित होता है। धीरे धीरे सैनिक प्रशासन की राजधानी कामाकुरा में भी विलासिता और शिष्टाचार प्रवेश पाने लगे। विशाल वैभवपूर्ण राजप्रसादों का निर्माण किया गया। चीन से चाय का भी प्रवेश हुआ। चाय के साथ साथ जैन मत से अधिक घनिष्ठ रूप से संबद्ध चाय पान के विस्तृत समारोह का भी प्रचलन हुआ। चीन से चाय के साथ साथ चीनी मिट्टी के बर्तन भी आए, और इन बर्तनों के अनुकरण पर जापान ने पहली बार बढ़िया किस्म के चीनी मिट्टी के बर्तन बनाने लगे। विशेष रूप से काष्ठ मूर्तिकला का विकास हुआ। इस काल के कुछ नमूनों की तुलना सहज ही पश्चिमी जगत की अच्छी से अच्छी कलाकृतियों से की जा सकती है। खड़ग निर्माताओं ने अपने हस्तशिल्प को कलात्मक परिपूर्णता प्रदान की। इसी काल में चित्रकला की दो उल्लेखनीय प्रणालियों का विकास हुआ। इसी काल में एक बार जापान को विदेशी आक्रमण के भीषण खतरे का सामना करना पड़ा। मध्य एशिया वासी मंगोल जाति के लोगों ने मध्य तथा पश्चिम एशिया और पूर्वी यूरोप के देशों को पदलित कर चीन के राज सिंहासन पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया। 13वीं शताब्दी के उत्तर काल में उनके चीनी सम्राट कुबलाई खान ने जापान पर अधिकार करने का निश्चय किया। इस आक्रमण के खतरे का सामना करने के लिए जापान के लोग आपसी भेदभाव भुलाकर एक राष्ट्र के रूप में संगठित हो गए। शत्रु को विफल करने में उन्होंने अपनी पूर्ण शक्ति लगा दी। इस समय कई प्राकृतिक तत्व उनके सहायक सिद्ध हुए। तूफानों ने आक्रामक सेनाओं के बेड़ों को तहस नहस कर दिया। इस प्रकार सुदूर पूर्व में एकमात्र जापान ही एक ऐसा सभ्य देश था जिसने मंगोल सेनाओं का सफलतापूर्वक डटकर मुकाबला किया। आशिकागा युग। कालांतर में होजो परिवार की शक्ति का ह्रास हो गया। मंगोल आक्रमण को विफल करने के प्रयत्न में उनके साधन छिन्न हो गए। इसके अलावा कामाकुरा के विलासितापूर्ण वातावरण ने भी अपना काम किया। राज प्रतिनिधियों में भ्रष्टाचार बढ़ गया। वे समय से काफी पहले ही सेवानिवृत्त होने लगे तथा अपने बाद उन पदों को ऐसे नाबालिग संतानों के हाथ में दे दिए गए जिन पर उसके मंत्री या भूतपूर्व राज प्रतिनिधि का नियंत्रण रहता था। प्रशासन का समस्त ढांचा एक कठपुतली शोगुन के एक कठपुतली अभिभावक पर आश्रित था, और स्वयं अभिभावक भी कठपुतली सम्राट का प्रतिनिधि था। फलस्वरूप सर्वत्र अव्यवस्था फैल गई। जब चारों ओर बहुत अधिक असंतोष फैल गया तो राजा ने सत्ता को पुनः हस्तगत करने तथा द्वैत शासन व्यवस्था को समाप्त करने का प्रयत्न किया, क्योंकि जनता में उस पद के प्रति अब भी आदर भाव बना था। इसका परिणाम यह हुआ कि वर्षों तक गृहयुद्ध होता रहा। अंततः सैनिक परिवार आशिकागा की सहायता से सम्राट विजयी हुआ, परंतु फिर भी वातावरण पूर्णतः शांत नहीं हुआ। आधी शताब्दी से अधिक समय तक गृहयुद्ध जारी रहा। इस अव्यवस्था को बढ़ाने में पारिवारिक कलह और संघर्ष का बहुत बड़ा हाथ रहा। एक बार तो ऐसा प्रतीत होने लगा था कि केंद्रीय शासन का किसी भी समय अंत हो सकता है, लेकिन सौभाग्य से समय पर ही सत्तारूढ़ आशिकागा परिवार के साथ समझौता हो जाने से स्थिति कुछ सुधर गई। इसके बाद की 2 शताब्दियां भी शांतिपूर्ण नहीं रही। इस लंबे गृह कलह के दौरान लोगों के मन में अव्यवस्था की मनोवृत्ति इस प्रकार घर कर गई थी कि उस पर शीघ्र काबू पाना कठिन था। सैनिक परिवारों की शक्ति में वृद्धि हुई और क्योतो से दूर, जहां आशिकागा शोगुनों ने अपनी एक राजधानी स्थापित की थी, प्रत्येक परिवार लगभग अपने पृथक राज्य के निर्माण में संलग्न था। शक्ति संपन्न सरदारों ने अपने समुराई यानी योद्धा थे, जिनकी मृत्यु के प्रति उपेक्षा, निष्ठुरता, युद्ध कौशल तथा अपने नायक की पूर्ण निष्ठा आदि विशेषताएं आदि के जापान में भी अस्पष्ट लक्षित होती है। यह अव्यवस्था जापान साम्राज्य की सीमाओं के बाहर भी फैल गई। जापान के साहसी व्यापारी समुद्री लुटेरों ने चीन के तटवर्ती प्रदेशों में लोगों को परेशान करना शुरू कर दिया। उन्होंने वहां के शहरों और नगरों में लूटपाट मचाई और आग लगा दी। इस प्रकार उन्होंने मंगोलों के आक्रमण और चीनियों द्वारा जापानियों को संतोषप्रद व्यापारिक विशेषाधिकार प्रदान न किए जाने का प्रतिशोध लिया। उन्होंने चीन के निगमपो, शंघाई और सुचारू नगरों पर छापे मारे और अपने इन गतिविधियों का फिलीपींस तथा श्याम, वर्मा और भारत तक विस्तार किया। इस समय तो ऐसा भी आभास होने लगा था कि जापान के लोग 20वीं शताब्दी के वाणिज्यिक विकास की अवस्था को 350 वर्ष पहले ही प्राप्त कर लेंगे। इस आंतरिक विद्रोह को रणकुशल बौद्ध भिक्षुओं ने और अधिक बढ़ावा दिया। धर्मप्राण राजाओं, शोगुनों और अभिजात वर्ग के लोगों द्वारा अर्पित उपहारों से बौद्ध विहार धन धान्य एवं अन्य ऐश्वर्य से भरपूर थे। कभी कभी तो यहाँ हजारों प्रशिक्षित योद्धाओं के दल आश्रय पाते थे। गड़बड़ के इन दिनों में धार्मिक संस्थाओं के अनेक सदस्यों ने शस्त्र धारण कर लिए। कई लोग बिना किसी धार्मिक कारण के अन्य स्वार्थों की पूर्ति के लिए भी भिक्षु का चोगा पहनने लगे, और कालांतर में बड़े बड़े विहार ऐसे उपद्रवियों के गढ़ बन गए जो समीपवर्ती प्रदेशों को आतंकित किए रहते थे। आशिकागा शोगुनों की उच्च श्रृंखलता तथा अपव्यय ने इस अराजकता को और अधिक बढ़ाया। ये लोग विलासिता तथा राज दरबार से संबद्ध परंपरागत दुराचारों के शिकार हो गए। अपने इन अतिचारों की पूर्ति के लिए भारी करारोपण करना आवश्यक हो गया। सैनिक परिवारों ने अपने प्रभुत्व की वृद्धि के साथ साथ धीरे धीरे राजकीय कोष में अपना अंशदान कम कर दिया। फलस्वरूप राज्य के भरण पोषण की सारी जिम्मेदारी क्योतो के आसपास के सीमित से क्षेत्र पर आ पड़ी। आखिर करों का बोझ असह्य हो गया और जनता में विद्रोह की अग्नि प्रज्वलित हो गई। उन्होंने कर देने से इनकार कर दिया और जो कर्ज उन पर था उसे माफ करने का अनुरोध किया। राजा लोग अत्यधिक संकटापन्न अवस्था में थे। यहाँ तक कि एक आशिकागा शोगुन ने चीन का प्रभुत्व स्वीकार कर वहां के सम्राट से जापान के राजा की उपाधि ले ली तथा अपने राजस्व की वृद्धि के लिए चीन को अपने देश में व्यापारिक अधिकार दे दिए। इस प्रकार वह भावी पीढ़ियों के सभी देशभक्त जापानियों के अभिशाप का भाजन हुआ। यूरोपीय लोग के आगमन से इस अराजकता में और भी अधिक वृद्धि हुई। जैसा कि पश्चिमी इतिहास के विद्यार्थी भलीभांति परिचित हैं, पंद्रहवीं तथा प्रारंभिक 16वीं शताब्दी की अनुसंधान के युग में नए प्रदेशों की खोजों में रत पुर्तगाली जापान में प्रविष्ट हुए। इस देश के बारे में संभवतः पहले पहल यूरोप वालों को वेनिस के यात्री मार्को पोलो से पता चला था। मार्को पोलो ने जापान पर मंगोलों के आक्रमण के समय कुछ वर्ष कुबुलाई खा के दरबार में बिताए थे। उसने इन द्वीपों के वैभव की आश्चर्यजनक कथाएं यूरोप वासियों को सुनाई। अंततः इस देश की फिर से खोज करने की आशा से प्रेरित होकर ही कोलंबस ने पश्चिम से पूर्व की ओर सीधा समुद्री मार्ग ढूंढ निकालने के लिए अपनी प्रसिद्ध यात्रा की। वास्को डेगामा की गुड होप अंतरिप यात्रा के 50 वर्ष पश्चात लगभग 1542 ईस्वी में पहले पहले यूरोप के अधिवासी पुर्तगाली जापान पहुँचे। इसके बाद स्पेन, डच तथा ब्रिटेन वासी आए। इन्होंने वहाँ वाणिज्य की स्थापना की और ये अपने साथ दो ऐसी चीज़ें लाए जिनका जापान के भावी जीवन पर अत्यधिक प्रभाव पड़ा। ये चीज़ें थी आग्नेयास्त्र और ईसाई धर्म। जापान के लिए आग्नेयास्त्र बिल्कुल नई चीज़ थी और अंशतः इसके उपयोग से वहाँ के सामंत केंद्रीय प्रशासन से और अधिक स्वतंत्र होने में सफल हुए। इसने सेनानायकों के दुर्गों का रूप ही बदल दिया। अब सुरक्षा के लिए काष्ठ निर्मित भवन या सीधी सादी गारे की दीवारें पर्याप्त न थी। फलस्वरूप बड़े बड़े किलों और पत्थर की मजबूत दीवारों का निर्माण हुआ। यहाँ सर्वप्रथम ईसाइत का प्रचार जेसुइट फ्रांसिस एवं जेवियर धर्म प्रचारकों ने किया। ये लोग 1549 में कुछ पुर्तगाली तथा जापानी सहयात्रियों के साथ जापान में प्रविष्ट हुए थे। इनके बाद सोसाइटी ऑफ जीसस के अन्य सदस्य आए। इन उत्साही प्रचारकों के संदेशों का शीघ्र और उत्साहपूर्वक स्वागत हुआ। रीति रिवाज, सिद्धांत तथा संगठन की दृष्टि से जापान को रोमन कैथोलिक ईसाई मत बौद्ध धर्म से, जिससे वे पहले ही सुपरिचित थे, कुछ भिन्न प्रतीत हुआ। ईसाई धर्म स्वीकार करने पर उन्हें पश्चिम के साथ व्यापार में काफ़ी लाभ होने की आशा थी, अतएव वे पहले ही उसके पक्ष में थे। बौद्ध धर्म लोगों की धार्मिक आवश्यकताओं की पूर्ति में आंशिक रूप से असफल रहा और विशेषतया इस काल में यह नैतिक एवं आध्यात्मिक दृष्टि से अवनति की ओर अग्रसर हो रहा था। इस नवीन धर्म का राजधानी में स्वागत हुआ। जेवियर के आगमन के पश्चात एक पीढ़ी से भी कम की अवधि में वहाँ लगभग 200 गिरजाघर बन चुके थे और ईसाई मतावलंबियों की संख्या लगभग 15 लाख हो गई थी। जिस समय धर्म प्रचार का कार्य उत्कर्ष के उच्चतम शिखर पर था, उस समय वहाँ के धर्मांतरित लोगों की संख्या का अनुमान 60 लाख के लगभग लगाया जाता है। इस संख्या में कुछ अतिशयोक्ति प्रतीत होती है। अधिपति सामंतों की ओर से इस समय 2 राजदूत मंडल रोम भेजे गए थे। इस समय तो ऐसा प्रतीत होने लगा था कि शीघ्र ही जापान ईसाई मतावलंबी राज्य में परिणत हो जाएगा। जापान में जहां अनेक धार्मिक मत पारस्परिक कलहों में उलझे हुए थे, ईसाइयत ने इन कलहों को और भी अधिक उग्र कर दिया। इसके अतिरिक्त सैनिक नायकों का पारस्परिक संघर्ष, रणकुशल बौद्ध भिक्षुओं का संघर्ष, केंद्रीय प्रशासन की अशक्तता, राजधानी का अराजकतापूर्ण वातावरण, आग्नेयास्त्रों का प्रचलन तथा ईसाई धर्म के आगमन से पैदा हुई फूट, इन सब बातों से एक बार तो ऐसा आभास होने लगा था कि जैसे संपूर्ण राज्य शीघ्र ही छिन्न भिन्न हो जाएगा। इतना सब होते हुए भी संस्कृति के क्षेत्र में अवश्य कुछ न कुछ प्रगति होती रही। क्योतो में भी कुछ ऐसे शांति के क्षण अवश्य आए जब शांतिकालीन कलाओं के पनपने के लिए अनुकूल परिस्थितियां उपलब्ध हुईं। कुछ बड़े बड़े सामंतों जिन्हें वहां दाइमो यानी बड़ा नाम के नाम से पुकारा जाता था, के दरबारों में जीवन को परिष्कृत करने की आवश्यकता पर जोर दिया जाता था। राजधानी की भांति विलासिता को वहाँ भी घृणा की दृष्टि से देखा जाता था। स्थान स्थान पर शहर बसे हुए थे। बौद्ध धर्म का जैन समुदाय तथा इससे संबद्ध चायपान समारोह अत्यधिक लोकप्रिय हो चुके थे। कलात्मक नृत्य के प्रशंसक भी मौजूद थे और उसी काल में विकसित एक विशिष्ट शास्त्रीय शैली अभिजात वर्ग में अत्यधिक प्रचलित थी। बौद्ध धर्म की छत्रछाया में नाट्य कला का विकास आरंभ हुआ। पुष्पों के सुरुचिपूर्ण ढंग से सजाने की पद्धति का विशिष्ट अध्ययन किया जाने लगा। भूदृश्य उद्यान कला पर विशेष ध्यान दिया जाने लगा। अन्य क्षेत्रों की भांति इस क्षेत्र में भी चीन का ही अनुकरण किया गया, लेकिन पर्याप्त संशोधनों और परिवर्तनों के पश्चात ही उसे स्वीकार किया गया। सभ्य समाज में धूप आदि सुगंधित द्रव्यों को जलाकर वातावरण को सुगंधित करने का बहुत अधिक रिवाज था। पहले कुश्ती की तो सामान्य शैली प्रचलित थी, अब उसने एक विशिष्ट पेशे का रूप धारण कर लिया। इस सैनिक युग में खड़ग निर्माण कला ने ललित कला का दर्जा हासिल कर लिया। खड़ग निर्माण की विशिष्ट तकनीक और रहस्य पीढ़ी दर पीढ़ी पिता से पुत्र को प्राप्त होते रहे। चित्रकला की उत्तम कृतियों के समान ही इसमें भी उत्कृष्ट नमूने और डिजाइन प्रचलित थे, और वैसे ही मूल्यवान भी थे। जिन लोगों ने चित्रकला का प्रणयन किया, उनकी गणना भी जापान की महानतम विभूतियों के साथ ही की जाती है। इसके अलावा बुशिडो का भी, जो सैनिक वर्ग की नीति संहिता है, विकास हुआ।